छोड़ दो उसे। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, वीर के माथे पर बल पड़ गए थे और अबीर अपने चेहरे पर शरारत लाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अंदर का भाई जाग गया क्या, जो अपने सौतेले भाई को छुड़ाना चाहते हो? उस वक्त अमरीश की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इतना ही नहीं, उसकी आंखों से धारदार आंसू बह रहे थे। अब अरमान को वहां देखकर वो एक झटके से उसके पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। और अमरीश ने मिन्नतें करते हुए कहना शुरू कर दिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। हमें हमारे किए की सजा मिल चुकी है। वसुंधरा पागल हो गई है और वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बस मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अमरीश ये बोलकर बुरी तरह से अरमान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन अरमान को जैसे ही पता चला कि वसुंधरा पागल हो गई है और वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, तो ये बात अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आई। हालांकि वो बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करता आया था, और शायद यही वजह थी कि अरमान इतना ज्यादा सख्त मिजाज का हो गया था। लेकिन अब अमरीश के इस तरह से गिड़गिड़ाने पर अरमान को कुछ अजीब लग रहा था। वेल, फिलहाल अरमान ने अपनी बंदूक निकालकर सीधा अबीर के माथे से सटा दी। अब अबीर के सभी आदमी एक्टिव हो गए। अजीत ने अरमान के बाकी सभी आदमियों को गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर के पास आदमियों की पूरी फौज थी। फिर अबीर ने अरमान के सामने आस्था को बटरफ्लाई कहकर पुकारा तो अरमान काफी तमतमा गया, क्योंकि वो अबीर के मुंह से आस्था का नाम तक नहीं सुनना चाहता था। लेकिन जब देखो तब अबीर सिंह राठौर आस्था को अपनी बटरफ्लाई बोलता था। वहीं दूसरी ओर आस्था के दिल में बेचैनी पैदा हो गई थी। वो हर हाल में वहां जाना चाहती थी जहां अरमान गया था, क्योंकि वो अरमान को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और आस्था को तो खतरों के खिलाड़ी बनने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। हालांकि अरमान ने साफ साफ मारिया को लोगों को मेंशन के अंदर लेकर जाने के लिए कहा था, और सब लोग मेंशन में चले भी गए थे, लेकिन आस्था गाड़ी से नहीं उतरी। मारिया हैरान हो गई और आस्था की ओर देखकर बोली, क्वीन, आपको उतरना होगा, क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं जाना है। क्योंकि मारिया भी जल्द से जल्द लोगों को मेंशन में छोड़कर अरमान के पास पहुंचना चाहती थी, ताकि वहां जाकर उनकी मदद कर सके। लेकिन तभी आस्था ने मारिया की ओर देखकर कहा कि वो उसके साथ जाएगी। मारिया हैरान थी और बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं। अगर आपने मेरे साथ जाने की कोशिश की तो शायद किंग को ये बात पसंद न आए और उसकी सजा वो हम दोनों को दे। तभी आस्था ने मारिया की ओर देखा और बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मारिया जी, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज आप मुझे लेकर चलिए। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, मारिया हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि आस्था तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। इसीलिए उसने फटाफट से टाइगर को फोन करना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइगर अरमान के साथ था तो वो उसे पूछकर बता सकता था कि क्या वो आस्था को साथ लेकर आए या ना लेकर आए। लेकिन क्योंकि उस वक्त सभी के सभी गन पॉइंट पर थे और कोई किसी का फोन अटेंड नहीं कर रहा था, तो इसीलिए टाइगर ने भी फोन नहीं उठाया। मारिया ने बारी बारी से सबको फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब तो मारिया के मन में भी हलचल पैदा हो गई थी। उसे वहां जाकर देखना होगा कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मारिया देरी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने आस्था से कहा, देखिए क्वीन, प्लीज मैं आपकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आपको मेंशन के अंदर जाना ही होगा। तभी आस्था चीखते हुए बोली, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है मारिया जी? वैसे भी अबीर सिंह राठौर मेरी वजह से अरमान जी के पीछे पड़ा हुआ है, और मैं अबीर राठौर को अच्छे से समझा देना चाहती हूँ कि वो मुझे पाने की बेकार की जिद छोड़ दे। वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया की हूँ। ये बोलकर आस्था गाड़ी में एक तरफ खिसक कर बैठ गई। अब तो मारिया पूरी तरह से कश्मकश का शिकार हो गई थी। वो क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। अब वो आस्था को कैसे समझाए कि वो वहां नहीं जा सकती है, वहां काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, और ऊपर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। तो इस वजह से अब मारिया के दिल की बेचैनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उसने एक शर्त रखी कि आस्था गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। उसे लेकर वो अबीर सिंह राठौर के मेंशन की ओर रवाना हो चुकी थी, क्योंकि मारिया अब हर हाल में वहां पहुंचकर सब कुछ हैंडल करना चाहती थी। क्योंकि अगर इस तरह से कोई फोन नहीं उठा रहा था तो इसका मतलब साफ था कि वो जरूर खतरे में है। अब अरमान ने अबीर के आदमियों को देखकर तिरछी सी मुस्कुराहट दी और डेंजरस आवाज में बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे एक आदमी को मैं पलक झपकते खत्म कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी के लिए वीर रायचंद को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी वीर रायचंद की जान जाए, उसकी जान जाने का समय नहीं आया है। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, अबीर भड़क गया और ठंडे स्वर में बोला, इसने अपनी जिंदगी की गलती की है, इसे मेरी बटरफ्लाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। तुम जानते हो अरमान, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि मेरी बटरफ्लाई तुम्हारे साथ है। जिस दिन मेरी बटरफ्लाई मेरे पास आ जाएंगी, उस दिन मैं तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरी बटरफ्लाई लेकर यहां से चला जाऊंगा। अब अरमान का पारा बहुत बढ़ चुका था। अब उसके लिए गुस्सा कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। बार बार उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौर के पिता अमरेंद्र राठौर को दिए गए जुबान रोक दिया करते थे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर पहुंच चुका था और अब अरमान के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए अरमान ने अब फायर कर दिया, लेकिन तब तक किसी ने अरमान के हाथ को पकड़कर उसकी बंदूक की नली को सीधा कर दिया और फायर खाली चला गया, क्योंकि अरमान की ओर फायर हुआ था। अबीर अरमान की ओर देखकर तिरछा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल अबीर की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि इस वक्त अरमान का हाथ किसी और ने नहीं बल्कि अबीर के अपने पिता अमरेंद्र राठौर ने रोका था। अमरेंद्र को वहां देखकर अबीर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वो हड़बड़ाते हुए बोला, पापा आप
क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए। पापा, आपने यहाँ आकर गलती कर दी। तभी अचानक अमरेंद्र जी गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने खींचकर अबीर सिंह राठौर के मुंह पर एक चांटा मार दिया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नाराजगी से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से ये घटिया हरकत करने की? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जमीन के पीछे यहाँ तक आने की और अरमान सिंघानिया साहब को इस तरह से परेशान करने की? हाँ, बोलो, जवाब दो। और तभी अमरेंद्र ने भी ऑर्डर दे दिया कि वो सभी अपनी बंदूकें कीचे कर लें और वीर को छोड़ दें। अब वीर को छुड़ा लिया गया था और अमरेश ने अरमान के सामने अपनी नजरें नीचे करते हुए अपने किए की माफी मांगी और अमरेश वीर को लेकर वहां से जाने लगा। वीर के चेहरे और आंखों में इस वक्त सभी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसे अपने बाप का इस तरह से गिड़गिड़ाना कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन फिलहाल अमरेश चुपचाप शांति से अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि उसके बेटे की जान बच गई है और वो उसे सीधा वहां से मेंशन ले आया और वहां जाकर सामान पैक करने को बोलने लगा। लेकिन वीर की आंखों में कुछ था जिससे साफ पता चल रहा था कि वो एक बार फिर लौटेगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ।
वहीं अबीर घूर कर अपने पिता को देखते हुए नाखुश होकर बोला, आखिरकार आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपको वो जमीन नहीं लौटा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे भी अरमान ने जबरदस्ती आपसे वो जमीन ली है और मैं उस जमीन को वापस हासिल करूंगा और साथ ही साथ अरमान से जाकर उसकी बीवी को भी मैं अपना बनाकर रहूंगा। अबीर की इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर अमरेंद्र जी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने एक और चांटा उसके मुंह पर मार दिया। तब अबीर अपने पिता को घूरता रह गया। तब अबीर सिंह राठौर के पिता उसकी ओर देखकर लाचार होकर बोले, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तेरी नीयत इतनी ज्यादा गिरी हुई हो सकती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से सिंघानिया साहब की बीवी के बारे में सोचने की? हाँ, तब अबीर ने एक लुक अपने पिता की ओर देते हुए कहा, जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था उस दिन से मैं उसे पसंद करने लगा था। मुझे नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन जब से मैंने आस्था को देखा है पहली नज़र में ही मैं उसको प्यार करने लगा था और आस्था को डेस्परेटली मैं अपना बनाना चाहता था। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सबके चेहरे ऐसे पड़े थे कि अगर उन्हें मौका मिल जाए तो अबीर सिंह राठौर के इतने टुकड़े करें कि उसके टुकड़े भी किसी के हाथ ना आए। अब सब के सब अपने गुस्से से लाल चेहरों के साथ तमतमाते हुए अबीर की ओर ही देख रहे थे। वहीं अरमान सिंघानिया भी काफी हद तक हैरान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से अबीर उसी के सामने खड़ा होकर उसी की ही बीवी के बारे में इस तरह की बातें करेगा। अब अरमान का पारा बढ़ चुका था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था और अबीर के पिता अमरेंद्र जी ने अरमान के गुस्से को भांप लिया था। वो समझ चुके थे कि अगर उनका बेटा अभी चुप नहीं हुआ तो शायद उनके बेटे का आज आखिरी दिन हो सकता है। तभी अमरेंद्र जी अबीर की ओर देखते हुए बोले, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और वैसे भी हमने तुम्हारा रिश्ता MLA साहब की बेटी शिवानी के साथ तय कर दिया है। सगाई हो गई है और अगले महीने ही हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब जैसे ही अबीर ने ये बात सुनी वो पूरी तरह से हिल गया था। वेल, तभी अबीर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम आप मेरे नाम के साथ मत जोड़ें। वैसे भी मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और सिर्फ आस्था को चाहता हूँ। मैं सिर्फ बटरफ्लाई से शादी करूंगा, समझे आप? अब अबीर की बातें सुनकर अमरेंद्र जी का बारा बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ अरमान की ओर देखकर उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा आज अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवा बैठेगा। इसीलिए वो तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर अरमान के सामने खड़े हो गए और फिक्र भरी आवाज़ में बोले, मिस्टर सिंघानिया, इस नालायक की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वैसे भी जब वो ज़मीन मैंने आपको दी थी, हाँ, हालांकि आपने मुझे मजबूर किया, वो ज़मीन मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उस ज़मीन की आपने मुझे उस वक्त अच्छी खासी कीमत दी थी जिसके बदौलत मैंने अपना फ़ौरन बिजनेस सेटअप किया। वो ज़मीन सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और एक बात, मेरे बेटे की मैंटेलिटी मैं जानता हूँ कि उसने आपकी बेवी की शान में गुस्ताखी की है, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। ये बोलकर अमरेंद्र जी अबीर की तरफ से माफी मांगने लगे थे, लेकिन अरमान तो अभी भी यही सोच रहा था कि क्या वाकई इसका रिश्ता तय है। तब अबीर ने अरमान की ओर देखकर बेरुखी से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आस्था सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं उसे पाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अब अमरेंद्र जी अपने बेटे के इस तरह के फालतू की बातें सुनकर परेशान थे क्योंकि आस्था के लिए जुनून अबीर की बातों में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक किसी ने आकर एक जोरदार चांटा अबीर सिंह राठौर के मुंह पर मार दिया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी आस्था थी। आस्था जो कि मारिया के साथ वहां आ तो गई थी और मारिया की बात के अकॉर्डिंग वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अमरेंद्र जी जब अपने बेटे को डांट रहे थे, उसे चांटे मार रहे थे और साथ ही साथ जो कुछ उसे समझा रहे थे, ये सारी बातें आस्था सुन चुकी थी और आस्था के लिए अब गाड़ी में बैठे रहना नामुमकिन हो गया था। आस्था तो सोच रही थी कि अबीर सिंह राठौर कितना ज्यादा घटिया आदमी निकला, अपनी मंगेतर के होते हुए भी ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है,
इसे तो आज हम सबक सिखा कर रहेंगे। ये सोचते हुए आस्था जल्दी ही गाड़ी से बाहर निकल गई और सीधा उसने अबीर सिंह राठौर के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। वहीं अरमान आस्था को वहां देखकर चौंक गया था।